Today we are going to look at this aspect called self-control.
आज हम आत्मसंयम की बातों को देखने वाले हैं.
Are you ready to listen?
Yes.
क्या तैयार है सुनने के लिए?
Yeah, one of the fruit of the spirit is self-control.
और आत्मा के फल जो है उसमें से एक है वो आत्मसंयम है.
Galatians 5 verse 22 to 23, this is what it says.
और गलातियों की पांचवें अध्याय के 22 और 23 वचन में यह लिखा है.
The fruit of the spirit is love, joy, peace, and it continues to say almost 9 fruits. At the end it says self-control.
और वहां पर 9 ऐसे वरदान बताए गए हैं और फल बताए गए हैं और आखिरी जो है वो आत्मसंयम.
And it's a very important fruit.
और वो बहुत ही महत्वपूर्ण फल है.
Every Christian needs to have self-control in their life.
और हर एक मसीही को अपने जीवन में आत्मसंयम होना बहुत ही आवश्यक है.
Proverbs 25 verse 28.
नीति वचन का 25 का 28
वचन. What it says.
और ऐसा उसमें लिखा है.
Like a city whose walls are broken.
जैसे एक शहर जिसकी शहर पनाह टूट गई है.
Is a person who lacks self-control.
और वो उस व्यक्ति से व्यक्ति के बराबर है जिसके पास आत्मसंयम की कमी है.
Proverbs 16 verse 32.
और नीति वचन 16 का 32वां वचन.
It says better a patient person than a warrior.
और विलंब से क्रोध करना वीरता से.
One with self-control than one who takes a city.
और अपने मन को वश में रखना नगर के जीत लेने से वो उत्तम है.
Let me just share one more scripture.
और एक वचन मैं आपको बताता हूँ.
2 Timothy chapter 1 verse 7.
और 2 तिमुथियुस का पहले अध्याय का 7वां वचन.
For God gave us a spirit not to fear.
क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है.
But of power and love and self-control.
बल्कि सामर्थ्य और प्रेम और आत्मसंयम का आत्मा दिया.
God has not given us the spirit of fear.
और परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है.
But of power and love and self-control.
बल्कि सामर्थ्य का प्रेम का और आत्मसंयम का आत्मा दिया.
Now, when the Holy Spirit came into our lives,
जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आया,
He took away the fear,
और उसने डर को निकाल दिया,
and He replaced fear with few other things,
और उस डर को निकाल के और कुछ बातें हमने जोड़ ली,
He replaced it with power,
और उसने सामर्थ्य भर दिया,
He replaced it with love,
और प्रेम को भर दिया,
He replaced it with self-control,
और आत्मसंयम भी भर दिया.
So what is self control?
तो आत्मसंयम है क्या?
There are few words interchangeably used in the Bible. This word self-control is interchangeably used by other words.
और आत्मसंयम यहाँ शब्द अलग-अलग तरीके से उसका इस्तेमाल किया है बाइबल में.
Some of the translations say self-discipline.
और कुछ जो अनुवाद है वो कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन यानी अपने आप में अनुशासन.
सम से साउंड माइंड.
और कुछ कहते हैं मन को स्थिर रखना.
अनदर सेज टेम्परेंस.
और कुछ जो है अपने आप को काबू में रखना.
एंड इफ यू रीड द बाइबल एंड इफ यू अंडरस्टैंड हाउ वी आर मेड एज ह्यूमन बीइंग.
और अगर बाइबल आप समझ पाते हैं और हम कैसे बनाए गए हैं अगर इस बात को आप समझे.
यू रियलाइज वी आर मेड ऑफ 3 पार्ट्स.
तो आप समझ जाएंगे कि हम 3 बातों से बनाए गए हैं.
द बॉडी द सोल एंड द स्पिरिट.
और शरीर है प्राण है और आत्मा है.
यू नो सम पीपल सेज वी आर मेड ऑफ 2 parts.
और कुछ लोग कहते हैं हम 2 भागों से बनाए गए हैं.
It says just body and soul.
और बस प्राण और शरीर.
When we die, the soul departs from the body.
और जब हम मर जाते हैं तो प्राण निकल जाते हैं.
But if you read the Bible, many places it speaks about the body, soul and the spirit.
लेकिन अगर हम बाइबल को पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि 3 बातें उसमें हैं. शरीर.
Spirit is the part that connects with God.
और आत्मा वो बात है जो परमेश्वर से जुड़ जाती है.
Soul is the part that makes who we are in our character, in our mind, emotion and will.
और प्राण जो है जिसमें और अलग-अलग बातें भी है.
And body is the part that we see.
और शरीर जो है जो हमें दिखाई देता है.
The shell in which we live every day.
और वो ऐसा कवच जिसमें हम प्रतिदिन रहते हैं.
You're going ahead of me. Okay, what is self-control?
तो है क्या आत्मसंयम क्या है?
This is what it means.
और उसका अर्थ ऐसा
है. Ability to control oneself.
और अपने आप पर काबू में रखना, अपने आप को काबू में रखना.
In particular one's emotions and desires.
और खास करके अपनी भावनाएं और इच्छाओं को लेकर.
Especially in different situations.
और खास करके अलग-अलग स्थितियों में.
Emotions are very important of who we are and what we become at the end.
और हम कौन हैं और हम क्या बनते हैं उसके लिए भावनाएं काफी महत्वपूर्ण बात है.
See this this picture?
यह तस्वीर आप देख सकते हैं.
We can just pay attention.
इस पर ध्यान दीजिए थोड़ा समय.
Like I said, we made a body, soul and spirit.
जैसे हमने कहा कि हम शरीर, प्राण और आत्मा के बने हुए हैं.
And this is the whole person.
और यह हम पूर्ण व्यक्ति है.
And if the body is good,
अगर शरीर अच्छा है,
the soul is good,
तो और प्राण अच्छा है,
the spirit is alive and it's good,
और आत्मा जीवित है और अच्छा है,
you become a whole person,
तो आप परिपूर्ण व्यक्ति बन जाते हो.
If you can put the next one,
अगला चित्र.
Very often people,
और ज्यादातर लोग जो है,
they are very good in the body, they are healthy,
और शरीर में तो वो अच्छे रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं,
but in their soul they are still infants, they are still immature, they are still in their adolescent stage.
और अगर प्राण में वो अभी भी छोटे रहते हैं या जैसे छोटे बच्चे की तरह अपरिपक्व ऐसे होते हैं.
And maybe you're alive in the spirit.
और आत्मा में भले आप जागरूक हो.
This is very unhealthy.
लेकिन यह स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं
है. Doesn't make you whole.
वो आपको परिपूर्ण व्यक्ति नहीं बनाता है.
Just put the next one. I'm quickly going through.
और जल्दी से मैं बताता हूँ. और
even this is very unhealthy life.
और यह भी एक ठीक से स्वस्थता पूर्ण जीवन नहीं है.
You're taking care of your body. Body is good.
और शरीर का आप संभाल करते हो, शरीर अच्छा है.
But in your soul, you're still an infant.
लेकिन आप प्राण में जो है बच्चे जैसे हैं.
And in your spirit as well, you're an infant.
और आत्मा में भी आप बच्चे जैसे, छोटे बालक जैसे.
And we need to grow up.
और हमें इसमें बढ़ना है.
You can put the last one. I think it's the next one. Last one. Okay. This also can be part of an unhealthy life.
और यह भी ठीक नहीं है, पूरी तरह से स्वस्थता नहीं है.
Body is good.
शरीर अच्छा है.
Your soul is good. Your mind, emotions and will.
और आपका प्राण अच्छा है, आपका मन और आपका बाकी बातें अच्छी हैं.
But in your spirit, you are not made alive.
लेकिन आत्मा में आप फिर से जागरूक नहीं हुए.
You can say unbelievers who do not know the Lord Jesus is like this.
और जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं वो इस प्रकार होते हैं.
Can I just put the last one?
और आखिरी वन.
This is a growing Christian.
और यह जो बढ़ता हुआ मसीह है वो है.
You're good in the body. You're good in soul.
आप शरीर में अच्छे हैं, आपका प्राण अच्छे हैं.
And you're growing in the spirit. The spirit is controlling your body and soul.
और आत्मा में आप बढ़ रहे हैं और आत्मा इन दोनों पर काबू रख रहा है.
Even this morning, that invitation was there to receive the spirit.
और इस सुबह हमें न्योता मिला, हम आत्मा से भर जाएंगे.
So we grow in the spirit.
तो हम आत्मा में बढ़ते जाते
हैं. The part that connects with God and draw from God the strength.
और वो भाग जो परमेश्वर से जुड़ता है और उससे हम पाते हैं.
The part that draws from God and hears God on a daily basis.
और वो भाग जो परमेश्वर से जुड़कर परमेश्वर से हर दिन बातें सुनता है.
I want to ask you, which one are you in this?
तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप अभी जो तस्वीरें दिखाई उसमें से कौन सी तस्वीर आपकी है?
I've been just reading two books.
और मैं दो किताबें हाल में पढ़ रहा हूँ.
It's called Emotionally Healthy Leader.
और वो भावनिक तौर पर जो सही अगुवा है उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है.
And I'm also reading another book called The Emotionally Healthy Church.
और दूसरा भी किताब मैं पढ़ रहा हूँ जो भावनिक तरीके से अच्छी स्वस्थ
परिवार से. And I realize how infant I am in my emotions. I need to grow.
और मैं जान रहा हूँ कि मैं कितना वो बालक जैसा मेरा भावनाओं को लेकर हूँ.
And we all need to grow.
और हम सबको बढ़ना है.
And we all need to become whole in our lives.
और हम सबको परिपूर्ण बनना है जीवन में.
And that's where this aspect of the teaching that I'm bringing is so important.
और इसलिए जो मैं शिक्षा लेकर आ रहा हूँ वो इतनी महत्वपूर्ण है.
It's called self-control.
और आत्मसंयम उसका.
You know, if we have self-control in our lives,
अगर हमारे पास आत्मसंयम है तो
we grow in our emotion.
हम हमारी भावनाओं में बढ़ते हैं.
We have emotional strength.
और हमारे पास भावनिक ताकत रहेगी.
We have emotional intelligence.
और हमारे पास भावनिक बुद्धि भी रहेगी अगर मैं कहूँ तो.
There are positive emotions and there are negative emotions.
और कुछ जो है सकारात्मक भावनाएं हैं, कुछ है नकारात्मक भावनाएं.
Or you can say healthy emotions and unhealthy emotions.
या आप कह सकते हैं स्वास्थ्यपूर्ण भावनाएं या बीमारी की भावनाएं.
Yes, healthy emotion is, you know, the Bible calls love. You know, loving is a positive, healthy emotion.
जैसे प्रेम अगर आप देखेंगे तो प्रेम यहाँ एक सकारात्मक भावना है.
Compassion is a positive emotion.
और करुणा यह सकारात्मक भावना है.
Joy and gladness is a positive emotion.
और आनंद और खुशी यह सकारात्मक भावना है.
You know, God wants us to grow in these things.
और परमेश्वर चाहता है कि हम इसमें बढ़े.
Ability to understand and feel pain is a positive thing.
और दर्द को समझना यह भी सकारात्मक भावना है.
When you know, when people go through their sorrows, their pain, you understand them. It's a very positive thing.
जब लोग कष्ट और दुख से गुजरते हैं और आप जब उनको समझते हैं सही रीति से, तब वो सकारात्मक भावना है.
You know, the righteous anger, you know, which leads you to do something good, is a positive thing.
और एक धार्मिक गुस्सा जो आपको कुछ अच्छा करने के लिए कहता है.
You know, this unhealthy emotion like lust, which is the opposite of love.
कुछ जो है बुरी भावनाएं है, एक प्रकार से लालसा है जो आपको बुराई में लेके जाता है.
You know, hatred and bitterness,
या तिरस्कार या कड़वाहट.
You know, rage, the anger, that it's a destructive anger, which is a negative emotion.
या ऐसा गुस्सा जो जो नाश करने के लिए आपको प्रवृत्त करता है.
You know, depression, despair,
या निराशा होना, ये भी भावना,
you know,
अच्छी नहीं.
And you know, like Ephesians says, the coarse joking, which means pull people down, gossip, and all these are negative emotions, which is destructive.
और Ephesians की किताब में जैसे वहाँ पर कुछ हम चुटकुले करते या jokes बोलते हैं जो अच्छे नहीं होते, लोगों को हम नीचे कर दिखा देते हैं.
I just want to pick up a story from the Bible and maybe share a few things.
और बाइबल से मैं एक कहानी आपको बताऊँ और फिर कुछ बातें आपको बताऊँ.
If you have your Bible, open with me to Judges chapter 16.
और बाइबल अगर आपके पास है तो न्यायियों के अध्याय 16 को हम देखते हैं.
I won't read too many verses, but I'll just read few verses.
और उसमें सब मैं नहीं पढ़ूंगा, कुछ वचन जरूर पढ़ूंगा.
It's the life of Samson.
और शिमशोन का जीवन के बारे में.
Probably he was the strongest man in the Bible.
और बाइबल में वह काफी मजबूत ऐसा व्यक्ति था.
Verse 1 of chapter 16 says, one day Samson went to Gaza. When he saw a prostitute, he went to spend the night with her.
और जब शिमशोन अज्जा को गया और वहाँ एक वेश्या को देखकर उसके पास गया.
The people of Gaza were told, Samson is here.
जब अज्जियों को इसका पता चला कि शिमशोन यहाँ है.
They surrounded the place and lay in wait for him all night at the city gate.
उन्होंने उसको घेर लिया और रात भर नगर के फाटक पर उसकी घात में लगे रहे.
They made no move during the night, saying, "At dawn we will kill him."
और रात भर वो चुपचाप रहे और ध्यान को भोर होते ही उसका घात करेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा.
Verse 3 says, "But Samson lay there until only until the middle of the night. Then he got up and took hold of the doors of the city gate together with the two posts and tore them loose, bar and all. He lifted them to his shoulders and carried them to the top of the hill that faces Hebron."
लेकिन तीसरे वर्ष में लिखा है, परंतु शिमशोन आधी रात तक पड़ा रहकर आधी रात को उठकर उसने नगर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर पेड़ों समेत उखाड़ लिया और अपने कंधों पर रखकर उन्हें उस पहाड़ की चोटी पर ले गया जो हेब्रोन के सामने है.
You know, it's almost 46 kilometers. He took the very gates and he carried it and he walked 46 kilometers to up the hill
And it's amazing.
और वो भारी ऐसे दरवाजे हैं उसको उठाकर वो करीबन 46 मील की दूरी तक वो लेकर गया.
Verse 4 it says, sometime later he fell in love with a woman in the valley of Sorek whose name was Delilah.
और चौथे वचन में लिखा है इसके बाद वह सोरेक नाम नाले में रहने वाली दलीला नाम की एक स्त्री से प्रीति करने लगा.
Verse 25
और 25वां वचन.
While they were in high spirit, they shouted, "Bring out Samson to entertain us." So they called Samson out of the prison, and he performed for them when they stood him among the pillars.
जब उनका मन मगन हो गया तब उन्होंने कहा शिमशोन को बुलवा लो कि वह हमारे लिए तमाशा करे. इसलिए शिमशोन बंदी गृह में से बुलाया गया.
When Samson said to the servants who held his hand, because he was blind, his eyes were taken out, "Put me where I feel the pillars that support the temple, so that I may lean against them."
तब शिमशोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, "मुझे उन खंभों को जिनसे घर संभाला हुआ है छूने दे कि मैं उस पर टेक लगाऊं."
Now the temple was crowded with men and women. All the rulers of the Philistines were there, and the roof were about 3,000 men and women watching Samson perform.
Next verse.
Verse 27.
वह घर तो स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था. फिलिस्तीनियों के सब सरदार भी वहां थे और छत पर कोई 3,000 स्त्री पुरुष थे जो शिमशोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे.
Verse 28, then Samson prayed to the Lord, "Sovereign Lord, remember me. Please God, strengthen me just once more. Let me with one blow take revenge on the Philistine for my two eyes." Then Samson reached towards the two central pillars on which the temple stood, bracing himself again against them, his right hand on the one and his left hand on the other. And Samson said, "Let me die with the Philistine." Then he pushed with all his might, and down came the temple of the rulers and all the people in it. Thus he killed many more than when he lived. Verse 28.
तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दोहाई दी कि हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले. हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं फिलिस्तीनियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं. तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिनसे घर संभाला हुआ था पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया. नेक्स्ट. और शिमशोन ने कहा फिलिस्तीनियों के संग मेरा प्राण भी जाए. और वह अपना सारा बल लगाकर झुका. तब वह घर सब सरदारों और उसमें से सारे लोगों पर गिर पड़ा. सो जिनको उसने मरते समय मार डाला वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला.
Who was Samson?
कौन था शिमशोन?
He was a judge in Israel.
और वो इज़राइल में एक न्यायी था.
He was a judge for 20 years.
और 20 साल उसने वो काम किया.
He had an amazing strength.
और काफी सामर्थ्य उसमें था.
God had given him that strength.
और वो ताकत उसको परमेश्वर
ने दी. No one could defeat him.
और कोई उसे हरा नहीं सकता था.
Like I said, he took that gates and he walked for 46 kilometers.
और जैसे मैंने कहा कि वो उसने वो दरवाजों को उठाया और वो 46 किलोमीटर इतना दूर चला गया.
He killed 300 Philistine soldiers with a jawbone.
और उसने जबड़े के हड्डी से 300 लोगों को मार गिराया.
He it says another part says he caught 300 foxes at one time and tied the tails in pairs and fixed a burning torch on their tail and made them to run through the Philistine fields.
और उसने 300 लोमड़ियों को इकट्ठा पकड़ के उनकी पूंछें साथ में बांध दी और उसमें मशाल लगाई और उनको खेतों में छोड़ दिया.
And all the fields were burned up, or Philistine fields were burned up because of what he did.
और सारे खेत जो है जल गए जो उसने किया उसकी वजह से.
Can you catch one fox? Anyone here?
Have you ever एक भी लोमड़ी को पकड़ सकते हैं?
Yes, 300 foxes he caught.
और उसने 300 ऐसी लोमड़ियों को पकड़ा.
You know, recently I read a forward. I think Yesha sent me.
और किसी ने मुझे कुछ मैसेज भेजा था. Yesha ने.
Who killed Samson?
Samson ko kisne mara?
Delilah killed him.
Kya Dalila ne usse mara?
Or Philistines killed him?
Ya Palestinians ne usse mara?
Who killed Samson?
Kisne Samson ko mara?
Ten thousand Philistine soldiers could not kill him.
और 10,000 फिलिस्तीनियों के सैनिक उसको मार नहीं पाए.
So who killed him?
किसने शिमशोन को मारा?
Samson killed himself.
शिमशोन ने अपने आप को खुद को मारा.
He was physically very strong.
और वो अपने ताकत में शरीर में एकदम ही मजबूत था.
He was spiritually strong as well.
और वो आत्मा में भी एकदम अच्छा था.
But he was emotionally very weak.
लेकिन भावनाओं में वो बहुत ही दुर्बल था.
He was infant when it came to his emotions.
जब भावनाएं को लेकर अगर हम उसके बात करें तो वो बच्चे जैसे थे.
You read through his story, you will see this man, you know, man who is called by God, going up and down and up and down.
और यहाँ परमेश्वर का जन जिसके ऊपर परमेश्वर की बुलाहट है वो भावनाओं में ऊपर नीचे ऊपर नीचे.
He needed people to satisfy his emotions.
और वो अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाया.
You know, there was a childishness in him that nobody could, you know, could satisfy.
और एक प्रकार से वो बच्चे जैसी हरकतें उसकी भावनाओं की
वजह से. One area that he was neglected was his emotions.
और एक बात जो उसमें कमी थी वो है उसकी भावनाएं.
Proverbs chapter 19 verse 3, this is what it says.
और नीति वचन का 19वां अध्याय का तीसरा वचन उसमें ऐसे लिखा है.
In the Message Bible it says, people ruin their life by their own stupidity.
और लोग अपने जीवन की बर्बादी खुद की वजह से करते हैं.
So why does God always get blamed?
तो फिर परमेश्वर पर हमेशा क्यों दोष लगाया जाता है?
And sometimes people blame Satan for their stupidity.
और कभी-कभी लोग अपनी मूर्खता की वजह से शैतान को इल्जाम लगाते
हैं. And sometimes we blame God, says, God, where are you?
और फिर कभी-कभी हम परमेश्वर को दोष लगा के पूछते हैं, परमेश्वर तू कहाँ है?
But very often our own stupidity makes us lose things that God wants to give it to us.
लेकिन बहुत से समय ऐसा होता है कि हमारी मूर्खता ही हमें नीचे गिरा देती
है. You know, I recently preached about Elijah, the great man of God.
और हाल ही में मैंने एलिय्याह के बारे में प्रचार किया परमेश्वर का.
He did amazing things, but you see him praying to God, God take my life.
और वो बहुत अद्भुत बातें उसने की, लेकिन कभी उसने ऐसे भी प्रार्थना की, परमेश्वर मेरे जीवन को लेकर चले
जा. He wanted to kill himself.
और वो अपने आप को मारना चला था.
He's asking God, take my life. There's no need. There's no use living.
और परमेश्वर को एक प्रकार से कह रहा था, जीने का कोई अर्थ नहीं है, मुझे मार दे.
I was reading through the book of Jonah, and you can see this great man of God called Jonah praying 3 times, says, God, I don't want to live.
और योना के कहानी में पढ़ रहा था, उसमें वो 3 बार प्रार्थना करता है परमेश्वर से, परमेश्वर मेरे जीवन को ले ले.
You look at the Bible.
अगर हम बाइबल में देखते हैं,
you know, it gives real stories of people who are weak.
और ऐसे लोगों की कहानी है जो दुर्बल थे, कमजोर थे.
It's a book of weak people, mighty God.
और यह कमजोर लोगों का किताब लेकिन महान परमेश्वर का किताब.
David who could kill a Goliath.
और दाऊद जिस जो गोलियत को मार सका.
You know, champion in Israel.
और इज़राइल में जो शूरवीर था.
But you see David committing adultery.
लेकिन आप देखते हैं दाऊद एक व्यभिचार में गिर जाता है.
And it destroyed his family.
और उसकी वजह से उसका परिवार नाश हो गया.
You know, Moses, great man of God, but his anger.
और मूसा अच्छा महान परमेश्वर का जन, लेकिन उसका गुस्सा
is made him lose, you know, the opportunity to go into the promised land.
और परमेश्वर ने जो वाचा की भूमि में जाने के लिए वो वहां पर नहीं जा सका.
No, hundreds and, you know, thousands of people.
और हजारों की तादाद में लोग
kill themselves with their own mouth.
और अपने आप को वो खत्म कर दिए.
By what they speak.
और जिस तरीके से वो बोले उसकी वजह से.
What they eat, what they drink.
और जो वो खाते हैं या जो पीते हैं उसकी वजह से.
with the decisions what they make.
और खास करके जो निर्णय उन्होंने लिए उसकी वजह से.
That's why the Bible says a virtue that we need to add to our faith is self-control.
और इसलिए शास्त्र में हमें बताया गया है कि वो एक गुण है जो हमें हमारे विश्वास को जोड़ना है, वो आत्मसंयम है.
Ability in our emotions.
और हमारी भावनाएं और निर्णय लेने का एक प्रकार से.
That helps us to say no to unrighteousness.
और वो हमें मदद करता है जो गलत है उसको ना कहने के लिए.
You know that helps us to say yes to God.
और वो मदद करता है ताकि हम परमेश्वर की बातों को हाँ कहें.
Hallelujah.
Hallelujah.
He has not given us the spirit of fear.
और उसने हमें डर की आत्मा नहीं दी.
He has given us the spirit of self-control.
उसने हमें आत्मसंयम की आत्मा दी है.
You know what is self-control again?
और फिर से आत्मसंयम है क्या?
Understanding and controlling or guiding or leading your own body.
और अपने शरीर को, अपने आप को एक प्रकार से मार्गदर्शन करना, उस पर बराबर से काबू में रखना.
Realizing the strength and weaknesses of oneself.
और अपने सामर्थ्य और अपनी कमजोरियों को अच्छे से समझ लेना.
You know, some years back there was one of our friend in our church, Cyril. He had preached a brilliant word once.
और सिरिल जो हमारे कलीसिया में थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा एक प्रचार किया था.
And he asked this question, "What is your threshold?"
और उन्होंने यह प्रश्न पूछा, तुम्हारी एक जो मर्यादा है, सीमा रेखा है, वो क्या है?
And he said this, you know, example. He says he was studying in Xavier's College.
और वो जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई करते थे और एक उदाहरण उन्होंने दिया.
And he said I would never go on my birthday to college.
और वो ऐसा सोचते थे कि जन्मदिन वो कभी कॉलेज में नहीं जाते थे.
Because he said my threshold.
क्योंकि मेरी जो सीमा है, जो मर्यादा है,
it was not very good.
वो अच्छे से नहीं थी.
He says, if I go to college on that day,
अगर उस दिन मैं अगर कॉलेज में जाऊं तो,
it says the fellow students, the girls will come and hug me and kiss me for my to wish me.
और जो मेरे संगी, जो विद्यार्थी हैं, वो आके मुझे गले लगाएंगे, मुझे चुमा देंगे.
And he says that would stir up emotions in him.
और वो मेरे अंदर की वो भावनाएं को जागृत करेगा.
And he says, I wouldn't go on that day.
और इसलिए मैं उस दिन कॉलेज में नहीं जाया करता.
It was then when I was young.
और वो जब मैं युवा था, जवान था तभी.
Now I know and I am growing in my emotions.
और अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं मेरी भावनाओं को जानता हूँ, समझता हूँ.
My threshold has changed.
और मेरी जो मर्यादा है वो अब बढ़ गई है, अच्छी हो गई.
You know, some people say, you know, it's okay to drink, no problem.
और कुछ लोग कहते हैं ठीक है, पीना अच्छा है.
You know, I'm strong, I can have few pegs.
और मैं तो मजबूत हूँ, हाँ, मैं थोड़ा और ज्यादा पी भी सकता हूँ. और कुछ बोतलें बियर की बोतलें पी सकता हूँ.
Very often they don't know their threshold.
और ज्यादातर ऐसा होता है कि उनको अपनी मर्यादा मालूम नहीं होती.
As Christians, we must know our threshold.
और मसीह होने के नाते हमारी मर्यादाओं को हमें जानना अच्छा है.
How much we can go?
हम कितना और ज्यादा कर सकते हैं?
What will cause us to sin?
और क्या बात है जो हमें पाप में गिरा
दे? That's why the Bible says flee.
और इसलिए शास्त्र में लिखा है भाग जाओ.
It says flee from unrighteousness.
और अधार्मिकता से भाग जाओ.
Flee from worldly passions.
और जो दुनिया की जो सांसारिक बातें हैं उससे भाग जाओ.
You know the word flee is actually translated as this.
और भाग जाओ उसका सही अनुवाद इस प्रकार से है.
And it says if you see a dog, ferocious dog coming at you.
और कोई पागल कुत्ता आप देखते हैं अगर वहाँ पर है,
you know, you're not going to, you know, what you can say, compromise with that dog.
और फिर वो कुत्ते को आप शांत करने की कोशिश नहीं करेंगे.
You will run with all your might.
आप पूरी ताकत से दौड़ कर जाओ.
And that's what Bible says is a flee.
और वही बाइबल हमें बताता है भाग जाओ.
From youthful lust.
और जो युवा अवस्था की जो लालसा होती है उससे भाग जाओ.
No, your weaknesses and your strength.
और आपकी कमजोरी और आपकी ताकत सही रीति से जान लो.
No, your threshold.
और आपकी मर्यादा, आपकी सीमा उसे जान लो.
Don't cross.
और उसको पार करके नहीं जाओ.
I remember Pat just prayed today. He says, God set me free from alcohol.
और पैग ने आज प्रार्थना की परमेश्वर धन्यवाद कि तूने मुझे
और
40 साल पहले
and we used to have breaking of bread
और हम रोटी तोड़ना उसमें भाग लेते थे
once it was in our home we wanted to break bread
और एक दिन हम रोटी तोड़ने में हिस्सा लेने की कर रहे थे बात
I said we I have real wine can we break bread with real wine
तो मेरे पास जो सही मायने में दाखरस है वो है वाइन है तो and, क्या हम उसका इस्तेमाल कर सकते
हैं sir, if you don't mind, let's not have real wine.
तो अंकल पैट ने कहा कि अगर ये वाइन है तो हम उसको नहीं स्वीकार
His threshold, he says, I don't want to mess with myself.
और उनकी मर्यादा वो जानते थे उनकी सीमाओं को पता थी और बोलते हैं कि वो उससे पार करके मैं नहीं जाना
चाहता
और कुछ लोग है वो पैट के ऊपर हंसने लगे क्या गलत है
He's saying, I know my strength and my weakness.
लेकिन मैं उनके उस बात का आदर करता हूँ क्योंकि वो जानते हैं मेरी सीमा कहाँ
है। We need to know our strength and weakness.
और हमें जानना है हमारी ताकत और हमारी कमजोरी क्या है।
Understanding and controlling our emotions.
और समझना हमारी भावनाओं को और उन पर काबू रखना।
I really want to recommend this book if you can lay hold of this book.
अगर आप पढ़ना चाहोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि यह किताब पढ़ना अच्छा है।
Many Christians quit.
और बहुत सारे मसीह हैं वो आधे में छोड़ देते हैं।
They say out of 9 leaders in America, 8 of them quit before they can finish their race.
और अमेरिका में 9 अगो में 8 है जो आधे अधूरे छोड़ देते हैं।
Because they are weak in their emotions.
क्योंकि अपनी भावनाओं में वो काफी दुर्बल या कमजोर होते हैं।
Emotional strength is not there.
और उनका भावनिक ताकत है वो कम होती है।
They can heal the sick, they can do deliverance, they can do so many things, but it comes to their emotion, they are weak.
और आत्मिक बातों में वो काफी हुनर वाले होते हैं, चंगाई करते हैं, मुर्दों को जिलाते हैं, लेकिन भावनिक बातों में काफी कमजोर होते हैं।
Finally, understanding your enemy and his schemes.
और अंत में शत्रु को समझना और उसके चालाकियों को समझना।
Much of the self-control starts in our thinking.
और ज्यादातर जो हमारा आत्मा संयम है वो हमारे दिमाग में शुरू होता है।
They say the greatest battle goes on between the two ears.
और कहते हैं कि सबसे बड़ा युद्ध हमारे दो कानों के बीच होता है
The greatest battle is going on here in our mind.
और हमारे मन में यहाँ पर बड़ा युद्ध होता है
And we must understand the war that is going on.
और हमें समझना है ये जो युद्ध हो रहा है हमें उसको अच्छे से समझना
battle
है
of the mind is so important.
और यह जो मन का लड़ाई है वो इतना महत्वपूर्ण है
1 Corinthians chapter 10 verse 13
और 1 कुरिन्थियों के 10वें अध्याय का 13वां वचन
says no test or no temptation has overtaken you That which is not common to man. God is faithful and he will not let you be tempted beyond your ability. And with the temptation that he will also provide a way to escape that you may be able to endure it.
तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है और परमेश्वर सच्चा है वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको
हालेलुया
हालेलुया
नो टेम्पटेशन कोई भी towards that which is not common to man.
कोई भी ऐसी परीक्षा हमारे सामने नहीं आती है जो साधारण
God is faithful.
लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है.
I want to tell you, whenever the temptation comes, the grace also comes.
और मैं आपको बताऊं जब वो परीक्षा आती है परमेश्वर का अनुग्रह और कोई ऐसे नहीं कह सकता हाँ नहीं मैं उसका विरोध नहीं कर पाया मैं उसके पीछे नहीं उससे पीछे नहीं हट पाया
What God is saying is not true.
अगर ऐसा है तो परमेश्वर जो कह रहा है वो
सही नहीं है God is faithful.
और लिखा है परमेश्वर विश्वास योग्य है
always provide a way to escape.
और वो हमें हमेशा वहां से निकल जाने का मार्ग दिखाएगा
Amen.
Amen.
I want to finish with Titus 2 verse 11 to 14
और तीतुस के दूसरे अध्याय का 11 से 14 वचन हम पढ़ेंगे और
It says, For the grace of God has appeared bringing salvation to all people, training us to renounce ungodliness and worldly passion and to live self-controlled, upright and godly life in the present age, waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ, who gave himself to us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people for his own possession who is zealous for good works.
Verse 11. क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति के साथ जीवन बिताए और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोहते रहे जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा दे और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना दे जो भले भले कामों में सरगर्म हो.
Amen. The grace of God has appeared to us.
और परमेश्वर का अनुग्रह हमें मिला है
to renounce.
ताकि हम बुराई को ना कह सके
सेल्फ कंट्रोल लाइफ
और ऐसा जीवन जिए जो आत्मसंयम से है.
Jesus is the answer.
और यीशु उसका उत्तर है.
He gives us grace.
और वो हमें अनुग्रह देता है.
I just want to say two more things and I want to finish.
और दो और बातें मैं आपको बताऊंगा फिर हम खत्म करेंगे.
Now when you look at your own life,
जब अपने आप पर आप देखते हो अपने जीवन को देखते हो
and if you see some of the traits of your parents or your grandparents coming into your life.
और अगर आप देखते हो कि आपके माता पिता या आपके परदादा या दादा उनके गुण आप में अगर दिखाई देते हैं
your emotions,
और भावनाएं आपको दिखाई देती है
then you need prayer.
तब आपको प्रार्थना करना आवश्यक है.
You need God to come and cut you off from generational curses.
तब परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करके वो पारंपरिक जो बातें हैं उसको आपसे अलग करने के लिए प्रार्थना करें. I realized
my dad was a very, you know, he had an issue with anger.
और फ्रैंको बता रहे हैं कि मेरे पिताजी जो है काफी गुस्सामंद होते थे.
And I realized I have the same problem.
और मैं जान गया हूँ कि मेरे पास भी वही एक प्रकार से कमी है.
Nowadays I realize my children have the same problem.
अब मुझे मालूम पड़ता है कि मेरे बच्चे भी उसी प्रकार से.
We need prayer. We need prayer.
और प्रार्थना की आवश्यकता है.
We need God to come us off.
और हमें परमेश्वर चाहिए ताकि हम इन बातों से कट सकें.
Simple example.
और एक साधारण सा उदाहरण देता हूँ.
Your father or your grandfather had messed up life, you know, in adultery and things like that. And I want to say to you, you need prayer.
और आपके पहले जो लोग हैं, दादा दादी नानी, आपके पहले के मंश के लोग, उनमें अगर व्यभिचार की बातें हैं या बुराई की बातें हैं, तो मैं आपको कहता हूँ, आपको प्रार्थना की बहुत जरूरत है.
I want to encourage you.
और मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ.
You need prayer, you need support, you need someone to explain to you the scripture and stand with you and cut you off from the things of the past.
और आपको वचन को सुनना है और उन सारी बातों को आपको उससे अलग करने के लिए किसी ने आपके लिए प्रार्थना करना आवश्यक है.
Maybe this book can help you.
शायद यह किताब आपको मदद कर सकता है.
You don't need to struggle on your own.
और आपको अपने आप में संघर्ष करने की जरूरत नहीं है.
Come and share. You receive discipleship. You receive, you know, advice and prayer. And I actually, God will just set you free.
और आप आके बताओ और किसी से बात करो और आपके लिए प्रार्थना की जाएगी और परमेश्वर आपको आजाद करेगा.
And secondly, you need the grace of God.
और दूसरी बात है परमेश्वर का अनुग्रह आपको होना आवश्यक.
It is not through discipline.
और वो अनुशासन से नहीं होता है.
Discipline can take a thus far.
अनुशासन जो है आपको एक सीमा तक लेके जा सकता
है. But the grace of God will take you further.
लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आपको दूर तक लेके जा सकता है.
The grace of God is a real thing.
और परमेश्वर का अनुग्रह यह सच्ची बात है.
Grace of God will help you say no.
और परमेश्वर का अनुग्रह आपको मदद करेगा ताकि आप ना कह सके.
Grace of God comes to you to lift you up, not to condemn you but make you remain where you are. It lifts you up and uses you for the glory of God.
और परमेश्वर का अनुग्रह आपको नीचे दबाने के लिए नहीं बल्कि आपको उठाने के लिए और आपको और परमेश्वर का ताकत देने के लिए आता है.
I want to appeal to you this morning.
और इस सुबह मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ.
I'm looking at my own life.
और मैं अपने जीवन को देखकर मैं कहना चाहूंगा.
And I'm looking at some of our lives here.
और हमारे बीच में कुछ है उनके जीवनों को देखकर मैं कहूंगा.
We got to become strong in our emotions.
और हमारी भावनाओं में हमें मजबूती.
We got to grow up in our emotions.
और हमें हमारी भावनाओं में बढ़ते जाना है.
We can't get hurt for small and simple things. We got to be strong in our emotion and become whole for the glory of God.
और छोटी छोटी बातों में हमें निराश या
चोट नहीं पहुंचनी चाहिए हमें, बल्कि हमें मजबूत होते जाना चाहिए.
And you got to have the fruit called self-control more and more in our lives.
और वो जो फल है बाकी फलों में से आत्मसंयम, उसमें हमें बढ़ते जाना.
Close your eyes. I want to just pray.
ये हम आंखें बंद रखे हम प्रार्थना.
Father, we thank you for this morning.
पिता, इस सुबह के लिए धन्यवाद करते हैं.
We know stories in the Bible, Lord.
हम बाइबल की कहानियों को जानते हैं प्रभु.
Of weak men and weak women.
और कमजोर पुरुष और कमजोर स्त्रियां.
But a mighty God.
लेकिन परमेश्वर जो महान है.
Only you are great, Lord.
और सिर्फ तू ही महान है प्रभु.
Only you can set us free.
सिर्फ तू ही हमें आजाद कर सकता है.
Only you can strengthen us.
सिर्फ तू ही हमें मजबूत बना सकता है.
Only you can give us grace.
सिर्फ तू ही हमें अनुग्रह दे सकता है.
Only you can make us whole.
और तू ही हमें परिपूर्ण कर सकता है.
In our body,
हमारे शरीर में,
in our soul,
हमारे प्राण में,
in our spirits,
और हमारे आत्मा में.
And we open ourselves to you, Lord.
और हम अपने आप को खुला मन करके तेरे सामने आते हैं.
There are generational stuff, Lord.
अगर पारंपरिक बातें अगर कुछ है, पीढ़ियों से कुछ बातें आई है, और उसे तोड़ दे तू प्रभु.
Open those areas.
और उन बातों को खोल दे प्रभु.
That your light may shine.
ताकि तेरा प्रकाश उनमें चमके.
And there are thresholds that are so short and so weak, Lord. I pray, give us grace, Lord.
और हमारी मर्यादा है जो छोटी सी है प्रभु, अनुग्रह दे ताकि वो और बढ़ते जाए.
We ask you this.
हम मांगते हैं.
Jesus name.
यीशु के नाम में.
You are our good God.
तो हमारा भला प्रभु है.
We ask you.
हम मांगते हैं
जीसस नेम,
यीशु के नाम
में.
आमेन.
God bless you. Enjoy the coffee.
और चाय और कॉफी का आनंद लेना.